हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पांचवें अध्याय के आखिरी श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। सब लोग मेरे बाद में बोलेंगे, भोक्तारम् यज्ञ तपसाम सर्वलोकमहेश्वरम् सूरुदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्तारां यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सूरुदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। अर्थात मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता समझो, समस्त लोकों को और देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो सरल भाषा में कहा जाए तो भोक्तारम यानी कि भगवान सब चीज़ के भोक्ता हैं। यज्ञ तपसाम समस्त लोकों को और देवताओं को यज्ञ करने से जो प्राप्त करना है वो मैं ही हूँ। सर्वलोक महेश्वरम सबके जितने भी लोक हैं वो सबका महेश्वर नियंता मैं ही हूँ। सूरुधम सब जीवों का मित्र हितैषी हितकारी मैं ही हूँ। सुरुदम सर्वभूतानाम सब जीवों का मित्र मैं हूँ। ये जो व्यक्ति जानता है इन तीन बातों को वो शांति मृच्छति यानी शांति प्राप्त करता है। तो आज श्रीमद् भगवद गीता का जन्म दिवस है। आज के दिन कुरुक्षेत्र के युद्ध के भूमि के बीच कौरव पांडवों के सेना के बीच जो अथाह सेना थी सागर के समान, उसके बीच में जब अर्जुन ने अपने रथ को भगवान को लाने को बताया और भगवान ने उनके रथ को दोनों सेना के बीच में लाया, तो अर्जुन को आज के दिन बहुत बड़ा भ्रम हो गया, बहुत दुख में आ गया। वो अपने गुरुओं को पिताजनों को पितामहों को भाइयों को रिश्तेदारों को स्वार्थ के हेतु युद्ध के हेतु विजय प्राप्त करने के हेतु एकत्र होकर देखकर उनको बड़ा दुख हो गया। उनको लगे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा और इस उपलक्ष्य में भगवान ने उनको आज के दिन भारत भूमि के कुरुक्षेत्र पर पवित्र स्थान पर भगवद गीता का उपदेश दिया। तो ये हमारा बड़ा भाग्य है, महान भाग्य है कि हम सब लोग इस भारत देश से हैं। इस भारत देश के इस पवित्र भूमि पर ऐसा दिव्य ज्ञान स्वयं भगवान के मुख से आज के दिन बताया गया। कई सारे शास्त्र हैं जो संवाद के रूप में, सभी शास्त्र जो है उनको श्रुति कहते हैं, यानी वो कहा गया है और सुना गया है, इसलिए जो सुना गया है उसको श्रुति कहते हैं। इसका मतलब तत्वतः ये संवाद है दो व्यक्ति के बीच में। कभी नारद मुनि किसी से बोल रहे हैं, कभी व्यास मुनि किसी से बोल रहे हैं, कभी भगवान किसी से बोल रहे हैं, कभी और कोई किसी से बोल रहा है, तो ये सब मिलकर पुराण वेद शास्त्र उपनिषद सब बन जाते हैं। लेकिन भगवद्गीता का विशेषत्व यह है कि भगवद्गीता सारे वेदों का सार है और उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि ये सारे वेदों का सार रूप में जो ज्ञान है वो स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से अर्जुन को सुनाया है, इसलिए अधिक महत्वपूर्ण होता है। वही बात किसी और ने बताई होती तो एक बात होती, वो महत्वपूर्ण होती, लेकिन वो अधिक महत्वपूर्ण तब बन जाती है जब स्वयं भगवान चुनते हैं कि मैं कहूँगा इसे। जैसे कोई सबसे महत्वपूर्ण काम होता है तो वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है वो करती है उसको। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन डज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क। इसलिए ये विश्व के लिए जो सर्वोत्तम संदेश है वो देने के लिए भगवान ने ऐसा योजना किया कि वो स्वयं अपने प्रिय भक्त अर्जुन को इस बात को स्वयं बता सके और उसके मोह माया से भ्रम से उसको निकाल सके। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने ये बात किसी सन्यासी को या कोई साधु को नहीं बताई है, जो पहले से विरक्त है, घर छोड़कर परिवार धन दौलत सब छोड़कर विरक्त होकर तपस्या कर रहे हैं, उसको ये उपदेश नहीं कहा गया है। ये उपदेश एक क्षत्रिय को कहा गया है, एक एडमिनिस्ट्रेटर को कहा गया है, योद्धा को कहा गया है, जो शस्त्र लेकर रथ पर बैठा हुआ है। वो हमारी तुम्हारी जैसा गृहस्थ भी है, उसको भी पत्नी है, बच्चे हैं, उसको भी जिम्मेदारी है, उसका भी काम है, कर्तव्य है। वो एक आम हमारे जैसा आदमी है और वो अपने जीवन की सबसे इम्पॉर्टेंट लड़ाई लड़ने जा रहा है। जैसे कि हम सब लोग जीवन की सबसे बड़ी एग्जाम देने जा रहे हैं, सब बहुत सारे एग्जाम दिए लेकिन ये बहुत सबसे बड़ी एग्जाम देने जा रहे हैं, वैसे वो अपने जीवन की सर्वोत्तम सबसे इम्पॉर्टेंट लड़ाई लड़ने जा रहा था। और उसी समय जो आज तक कभी हिम्मत नहीं हारा, जो आज तक कभी निरुत्साही नहीं हुआ, वो सबसे बड़ी लड़ाई के पहले ही निरुत्साही हो गया। तो इतना बाका प्रसंग था। और वो बाका प्रसंग ऐसा था कि अगर उस समय उसे सही उपदेश नहीं मिलता तो महाभारत युद्ध का निर्णय कुछ और होता और दुनिया का कल्याण किसी और दिशा में चला जाता, शायद कल्याण होता ही नहीं दुनिया का। तो इसलिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को उसके जीवन के सबसे बड़े प्रसंग में ये बताने का जो घटना है, ये घटना ये भगवान ने आयोजित किया, इसलिए उपदेश बहुत महत्वपूर्ण है। और हम सब लोगों के लिए भगवान ने अर्जुन का निमित्त बना के इस उपदेश को दिया। नाम अर्जुन का था, प्रसंग युद्ध का था, लेकिन जो ज्ञान दिया वो चिरंतन काल के लिए जो अमल करने लायक है वो ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया। और वो बताती भी है कि ये ज्ञान मैं पहली बार आपको नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने करोड़ों वर्ष पहले सूर्य भगवान को बताया था, और सूर्य भगवान ने अपने पुत्र को बताया था, और उसके पुत्र ने अपने पुत्र को बताया था, लेकिन बीच में ये ज्ञान की श्रृंखला जो है लाइन टूट गई, इसलिए मैं आपके निमित्त मात्र से दोबारा ये ज्ञान दे रहा हूँ। ऐसे नहीं कि ये नया मैं उत्पन्न कर रहा हूँ, ये पहले से उपलब्ध है, लेकिन आप आज के आपके स्थिति के अनुसार, आपकी समस्या के अनुसार इसको मैं दोहरा रहा हूँ। और इस बहाने उन्होंने सर्वोच्च ज्ञान सब जीवों के लिए प्रदान किया। आज विश्व में जितने भी देश हैं, जितने भी भाषा बोलते हैं, जितने भी धर्म हैं, जितने भी आध्यात्मिक लोग हैं, वो सब लोग भगवद्गीता को प्रमाण मानते हैं, स्टैंडर्ड स्पिरिचुअल लिटरेचर, इसमें कोई वाद किसी के बीच में नहीं है। बाकी विषय में विस्तार में बात हो सकती है कि ये अलग है, अलग विशेष रूप से मत भिन्न इसके अंदर हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान एक स्टैंडर्ड जो है प्रामाणिक, वो भगवद्गीता है। सब वेदों को अगर गाय माना जाए तो उस गाय के दूध को भगवद्गीता माना गया है सार के रूप में, और स्वयं ग्वाला बनकर भगवान उस दूध को निकाल रहे हैं और बछड़े अर्जुन को दे रहे हैं, ये इसकी उपमा दी गई है। तो हमें आज के दिन ये विशेष रूप से देखना चाहिए कि हमारे मंदिर में अभी भी भगवद्गीता का पठन चल रहा है, चलेगा 2-3 घंटे तक, पूरी भगवद्गीता गाई जाएगी उसमें। और ये विशेष लोग भी आज आना, ये भी एक बहुत ही सुंदर योग है आज का, योग भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सब लोग शांति चाहते दुनिया में, सब लोग अशांत हैं, मुक्ति सिद्धि भुक्ति कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। सब लोग अशांत हैं, सब लोगों को किसी को भोग चाहिए, किसी को भोग से तंग आ गया तो विरक्ति चाहिए, किसी को सिद्धि चाहिए, कोई मिस्टिक पावर चाहिए, लेकिन कहते हैं कि जो भोग चाहता है, जो भोग नहीं चाहता है, जो सिद्धि चाहता है, वो सब लोग सकल है अशांत, सब लोग अशांत रहते हैं, कोई संतुष्ट नहीं रहता है। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति में आते हैं, कृष्ण भक्त निष्काम, तो उसे खुद के लिए कोई कामना नहीं होती है, वो सब कुछ करता है भगवान के लिए करता है, इसलिए वो यज्ञ तप सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञातवा माम शांति मुच्छति। तो जो समझता है कि जो मुझे कुछ करना है वो अपने लिए नहीं करना है, उनके लिए करना है, वही सबके मित्र हैं, सबके सुरुद हैं, सबके हितचिंतक हैं, सब चीज़ों के मालिक वही हैं, सब चीज़ों की नियंता वही है, कर्ता कर्विता वही हैं, ये बात जिसको समझ में आती है वही व्यक्ति निश्चित रूप से शाश्वत रूप से इस दुनिया में शांति प्राप्त कर सकता है। तो ये इस श्लोक को पीस फॉर्मूला कहते हैं। सब लोगों को शांति चाहिए, दुनिया में इतने युद्ध हो रहे हैं, 2-2 देश अलग झगड़ रहे हैं, कई देशों की जोड़ियाँ युद्ध कर रही हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, परिवार में लोग झगड़ा कर रहे हैं, समाज में कर रहे हैं, जाति में कर रहे हैं, देश में कर रहे हैं, राज्य में कर रहे हैं, विश्व में युद्ध हो रहा है, तो ये सब जगह शांति का अभाव है, क्योंकि सब लोग अपने आप को केंद्र स्थान में रखते हुए दुनिया को देखते हैं, मुझे क्या मिलेगा, मेरा इसमें क्या होगा, मेरा स्वार्थ क्या है, और मेरे स्वार्थ के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, दूसरे का हित उसमें हो या ना हो, इसी को अशांति कहते हैं। जब स्वार्थ को केंद्र में रखकर दूसरों का हित ना देखते हुए व्यक्ति कार्य करता है तो वो अशांति ही प्राप्त करेगा, कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। शांति वो तब प्राप्त करेगा जब वो सबके सहायता के लिए सबका हित ध्यान में रखते हुए ऐसा कार्य करेगा जो सबके हित में हो और भगवान को प्रसन्न करे, उनकी सेवा में हो। तो उस व्यक्ति को कभी भी अशांति नहीं मिल सकती, वो हमेशा शांति को प्राप्त करता है। अशांति की जड़ स्वार्थ है, आई एम द ओनली पर्सन, मेरे लिए क्या मिलेगा, मेरे लिए कैसा होगा। जब तक मैं अपने जीवन के केंद्र स्थान में हूँ अशांति निश्चित, और जब मैं को हटाकर भगवान को वहाँ बिठाया जाए तो शांति के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। और शांति केवल नहीं मिलेगी, आनंद भी मिलेगा। केवल शांति करके क्या करना है, निगेटिव से जीरो में आ गए, जीरो में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। पॉजिटिविटी आनंद जब मिलेगा तब हमारा जीवन परिपूर्ण होगा। और ये ज्ञान ऐसा है कि ये सबसे बड़े योद्धा को मोह में और भ्रम में पड़ने के बाद में युद्ध को नहीं करने के मूड में आने वाला व्यक्ति, भगवान उसको खड़ा कर देते दोबारा, और वो अपने जीवन का सर्वोच्च युद्ध जो है वो बड़ी यशस्वी तरीके से लड़ता है और विजय प्राप्त करता है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः, ये जोड़ी जहाँ पर खड़ी है, ये ज्ञान जहाँ पर बताया जा रहा है, ये ज्ञान जहाँ पर जीवन में उतारा जा रहा है, उस व्यक्ति को हमेशा विजय मिलेगा। तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नितिर मतिर ममा, उसको धन मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, विजय प्राप्त होगा, और नीति भी वही होगी। ऐसे भगवान, ऐसे संजय कह रहे हैं, धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, भगवत गीता समाप्त होने के बाद में वो पूरा सार वर्णन कर रहे हैं कि ये दोनों जहाँ पर भी है, सच्चा गुरु सच्चा शिष्य, भगवान और उसके सच्चा भक्त, और उपदेश सुनाया जा रहा है, वहाँ पर कभी भी अशांति नहीं होगी, कभी भी विजय ही प्राप्त होगा। कहीं दारिद्र नहीं होगा, संपत्ति प्राप्त होगी, और कहीं भी अनीति नहीं होगी, सब जगह नीति पूर्ण वातावरण, एटिकेट्स फुल, इस प्रकार का वातावरण नीतिमत्ता द्वारा वाला पूर्ण पैदा होगा। तो इसलिए हम गीता का फोटो घर पे लगाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मत लगाओ, इसमें घर में झगड़े होंगे लेकिन ये बड़ी गलत फहमी है। आप जैसा उसको देख रहे हैं वैसा आपको फल मिलेगा उसका। आप देख रहे हैं ये युद्ध का स्थित फोटो है, इसमें युद्ध होने वाला वातावरण घर पे तैयार होगा, लेकिन अगर आप उसको देखेंगे, अरे कितने प्रेमी हमारे भगवान, देखो अपने भक्त के लिए सारथी बने हुए हैं, ड्राइवर बने, ड्राइवर मालिक जो है वो खुद ड्राइवर बना हुआ है, और अपने नौकर के आदेश का पालन कर रहा है, राइट में जाओ, लेफ्ट में जाओ, यहाँ बाढ़, यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ। तो ये फोटो हमको जहाँ पर कृष्ण और अर्जुन रथ में बैठे हुए हैं वो हमको प्रेम का प्रतीक दिखाते हैं, कैसा प्रेम भगवान अपने भक्त पर करते हैं। एक बार उनका भक्त बन के तो देखो, फिर आप भगवान के प्रेम का दिव्य अनुभव करोगे, और फिर वो भगवान ये सोचेंगे नहीं कि मैं भगवान हुए, मेरा भक्त है, मैं कैसे ड्राइवर बनूंगा उसका। बिना संकोच ड्राइवर बने वो 18 दिन तक, एक दिन भी नहीं, 12 घंटे दिन के, वो भी कैसे पैर से लात मारकर, राइट में जाओ, लेफ्ट में जाओ। इतना काम कोई व्यक्ति बिना प्रेम के नहीं कर सकता है। तो हमारी तरफ से भगवान पर प्रेम होने के पहले ही भगवान हम पर प्रेम करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। तो ये भगवान का जो गीता का चित्रपट है, जो हम हर गीता पर देखते हैं और घर में भी लगाते हैं, ये भगवान के अपने भक्त पर जताया हुआ दिव्य प्रेम का लक्षण है, और इसके देखकर हमको आंसू बहाना चाहिए कि हम पर तो, हमें तो भगवान के लिए कोई प्रेम नहीं, लेकिन भगवान देखो अपने भक्त पर कितना प्रेम कर रहे हैं, क्यों ना हम भी उनका भक्त बने। तो ये गीता का जो नतीजा है वो यही है कि हमें भगवान का भक्त बनना चाहिए। करिष्ये वचनं तवो, उनके द्वारा बताए गए आदेश का पालन करना चाहिए, उसी प्रकार जीवन चलाना चाहिए, तो अपने जीवन में कोई समस्या नहीं होगी, कोई अशांति नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा। यही गीता का सार है। एक वाक्य में अगर कोई पूछेगा आपको कि गीता का सार क्या है, तो एक ही सार है उसका, करिष्ये वचनं तवो, आपके द्वारा कहे गए वचनों का पालन मुझे करना है, बस उसके सिवा भगवत गीता का और कोई सार नहीं। तो आज के दिन एकादशी के दिन, जिसको वैकुंठ एकादशी कहते हैं, मोक्षदा एकादशी कहते हैं, कई प्रकार के नाम दिए गए हैं, आज के दिन अगर हम भगवत गीता को पढ़ते हैं तो बहुत दिव्य आध्यात्मिक लाभ होता है। आज के दिन अगर हम गीता खरीदते हैं तो उसका भी दिव्य लाभ होता है। आज के दिन हम किसी को गीता देते हैं, गीता दान करते हैं, तो भी उसका दिव्य लाभ होता है। तो ये सब काम आपको करने के लिए सुविधा उपलब्ध है यहाँ पर, यहाँ गीता उपलब्ध है, आप खरीद सकते हैं, आप दे सकते हैं किसी को, खुद पढ़ सकते हैं, उसको जीवन में उतार सकते हैं, भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही आज सुंदर दिन है आपके लिए, शुभकामना वाला। मार्गशीर्ष महीने में एकादशी के दिन भगवान स्वयं कहते हैं कि मार्गशीर्ष महीना मैं स्वयं हूँ, और इसके एकादशी के दिन ही उन्होंने ये दिव्य उपदेश अर्जुन को किया था। तो हमारी ओर से आप सबको भगवद गीता जयंती के उपलक्ष्य में शुभकामना और बधाई, और हम आपसे विनती करते हैं कि आप सब लोग भगवद गीता का आज पूरा लाभ लीजिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्णा।